پھر فرمایا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ولا تحسبن الله غافلا. اور تم ہرگز گمان نہ کرو کہ اللہ غافل ہے، تم اللہ کو ہرگز غافل نہ سمجھو. اما یعمل الظالمون، اس عمل سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں، یہ کافر، یعنی ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا. ظلم کیا ہے؟ کفر کرنا. کہ یہ کافر لوگ جو شرک کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ کو آپ غافل نہ سمجھیں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے، کیوں اللہ پکڑتا نہیں ہے ظلم کرنے والوں کو؟ کیوں اللہ کفر کرنے والوں کو جو ہے وہ موت نہیں دے دیتا؟ کیوں ان پر کوئی چھت نہیں گرا دیتا؟ کیوں ان کو پکڑ نہیں لیتا؟ کیوں ان کی رسی دراز ہے؟ انما یؤخرهم، اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیے ہوئے ہے لیوم، اس دن کے لیے، اس دن تک. تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. قیامت کی ہولناکی کا یہ حال ہوگا کہ انسان جو ہے اس کے لیے، کافروں کے لیے وہ دن اتنا ہولناک ہوگا کہ جیسے دیدے پتھرا جائیں گے. جیسے کسی مصیبت، غم، ایکسیڈنٹ، موت، پریشانی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ سب کچھ بھول جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ایک منظر پیش کیا ہے کہ اس دن مجرم جو ہے اس پر قیامت کی ہولناکی دہشت کا یہ حال ہوگا کہ مجرم جو ہے تشخصو، اپنی پلکیں جھپکائیں گے نہیں، ان کو ان کی آنکھیں جیسے پوری کی پوری کھلی بھی ہوں گی اور وہ جیسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہوں گے. تشخصو، پتھرائی بھی ہوں گی. فی ہی، اس دن. الابصار، ان کی آنکھیں، گویا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بے نور ہو جائیں گی. گویا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ان کو بالکل ہی جو ہے وہ ہوش ہی نہیں ہوگی. تو یہاں پر جو ہے حیرت سے، خوف سے، پریشانی سے جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کیفیت کو یہاں پہ بیان کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں موتعین مقنعی رؤوسہم، کہ وہ جو ہیں وہ موتعین سر اٹھائے ہوئے ہوں گے، کسی چیز پر ٹکٹکی باندھے ہوئے متی ہو کر آگے کو دوڑ رہے ہوں گے. ایک تو ہے نا سر اٹھانا، آنکھوں کا اٹھانا، تیز تیز دوڑنا. مقنعی، مقنعی کیا ہے اس کے معنی؟ کہ اس کے معنی بھی سر اٹھا کر دوڑیں گے، دیکھیں گے سر اٹھا کر. رؤوسہم، اپنے سروں کو. لا یرتدو الیہم طرفہم، ان کی نظریں جو ہیں وہ ان کی طرف لوٹیں گی نہیں. ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی طرف بھی دیکھتا ہے کہ میں نے ٹھیک ٹھاک ہوں، میرے کپڑے ٹھیک ہیں اور گھر میں سب خیریت ہے، یا دروازہ لاک کیا ہے، کبھی مصیبت کوئی پریشانی آئی، جیسے آگ ہی لگ گئی بستی میں، بلڈنگ میں الارم بجا، فائر الارم، لوگ بھاگ کھڑے ہو گئے، کوئی زیور کسی نے چھوڑا، کسی کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، کوئی کھڑکی سے کودا، کوئی روشن دان سے، کوئی دروازے سے، کہیں سے بھی. حتیٰ کہ ایسے میں جب بھاگ دوڑ مچتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اپنی مچی ہوئی ہوتی ہے پریشانی، فکر ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ اٹھائے جاؤ گے. میں نے کہا یا رسول اللہ، مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں. فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ اس بات کے قصد کا کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ لوگ ننگے ہیں اور ہم دیکھ سکیں. یہ بخاری کی روایت ہے. میں اکثر اس بات سے سوچتی ہوں، بچے کی پیدائش کا جب وقت ہوتا ہے، عورت پر جو زندگی اور موت کی کیفیت سے گزر رہی ہوتی ہے، اس کو وہ اتنی تکلیف میں ہوتی ہے، اس کو یہ ہوش ہی نہیں ہوتا کہ اب میں کس حال میں ہوں. آپ اس سے اس بات کا اندازہ کریں، کون کھڑا ہے، کیا کھڑا ہے. تکلیف کی شدت میں بے ہوشی کسی ایک کیفیت ہوتی ہے نا، اور اس وقت انسان کو ہوش نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے وہ کوئی اور حادثہ ہے، کوئی تکلیف ہو گئی، تو کس حال میں انسان، اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ اسی کیفیت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ सर उठाए हुए हैं, नजरें ऊपर को हैं, आंखें खुली हुई हैं, नजरें जमी हुई हैं, फटी की फटी हैं, दहशत की वजह से लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। ला यरतद्दू इलैहिम तरफहुम, उनकी निगाहें उनकी तरफ जो हैं वो लौट कर नहीं आ रही, नजरें ऊपर को जमी हुई हैं। वह अफिदातुहुम हवा, और उनके दिल उड़े जाते हैं, दिल खाली हैं। अभी जो है वो किसी औरत को स्कूल से फोन आया कि आपका जो बच्चा है ना वो स्कूल में नहीं है। तो औरत बड़ी परेशान हुई कि मेरा बच्चा स्कूल में नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा, वो सुबह पहले पीरियड में था, क्योंकि मुसलसल स्कूल से घर गई तो फोन आ रहे थे, और फिर उस वक्त भी फोन आया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो पहले पीरियड में तो था, ब्रेक के बाद से फिफ्थ पीरियड में नहीं है। तो औरत की बुरी हालत थी, उसको कुछ होश नहीं था कि कभी शोहर को फोन कर रही है और कभी स्कूल वालों को, और कि अब कुछ नहीं पता कि वो मैं बाहर से वो आई है तो उसको भूख लगी है, उसको क्या करना है, क्या काम है। और बाद में क्या पता चला कि वो बच्चा जो था वो म्यूजिक का पीरियड था। जब बाप को पता चला कि बच्चा नहीं है, तो म्यूजिक का पीरियड से उसने कहा हुआ था कि म्यूजिक के पीरियड में नहीं जाएगा, और बच्चा किताबों का शौकीन, और वो किताब लेके लाइब्रेरी में बैठा, पता नहीं किस कमजोर सा बच्चा अगर लाइब्रेरी में बैठा कहीं पढ़ रहा है, तो नजर ही नहीं आया किसी को कि वो लाइब्रेरी में बैठा है। जो ही बाप को पता चला तो उसने सबसे पहले पूछा कि वो पीरियड किस चीज का है, पता चला कि म्यूजिक का है। तो बाप ने कहा कि देखें, वो जरूर कहीं लाइब्रेरी में बैठा होगा, वो किताब पढ़ रहा होगा। तो जब देखा उन्होंने प्रिंसिपल टीचर, तो वो लाइब्रेरी में बैठा किताब पढ़ रहा था, उसको लाइब्रेरियन को भी वो नजर नहीं आया। फिर वो बुलाया उसको ऑफिस में, तो पता चला कि बच्चा जो था ना वो किताब पढ़ रहा था, है ना। तो बाज औकात कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ना खाने का होश, ना सोने का होश, ना किसी और चीज का, रास्ते में चल रहे हैं तो किताब पढ़ रहे हैं, जिस चीज किसी चीज को का किसी को जुनून हो जाए ना। तो लेकिन जब माँ बाप पे टूटती है मुसीबत, तो कैसे गम की कैफियत होती है कि कहाँ हुआ, क्या हुआ, कहाँ गया बच्चा। बाज औकात बाज चीजों का समझ नहीं आता। एक अमेरिका में माँ थी, उसका बच्चा कोई पेपर देने के लिए निकला और उसके बाद फिर वो गुम हो गया। मुझे वो माँ कभी भूलती नहीं है। जब उससे मैं बात करती, उसको मैं तसल्ली देती, तो जो वो सवाल करती, तो मैं सोचती कि अब इसको कैसे तसल्ली और दी जाए ना। बहरहाल वो बाद में मिल गया। लेकिन असल बात होती है कि जब इंसान पर गुजरती है ना मुसीबत की कैफियत, कुछ याद नहीं रहता, कौन से कपड़ा है, कौन सी कैसी कंघी है, क्या खा रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, फोन की बेल बज रही है, कुछ नहीं पता। कोई कुछ ऐसी हालत हो जाती है, कुछ होश नहीं रहता। तो यहाँ पे भी उसी बात को अल्लाह ताला ने बयान किया है कि आप देखेंगे आयत नंबर आप 42 और 43 को अगर आप देखें, तो जाहिरी और बातनी जो गम के वक्त इंसान की कैफियत होती है ना, उसका भरपूर इजहार है ना। आंखें तो हैं, पर नजर ऐसे आता है कि नजर नहीं आ रहा उसमें ना, लगता ऐसे है। इंसान तो है, लेकिन ये कि बेकल है, बेचैन है, इस्तराब की कैफियत में है, सर उठा हुआ है, नजरें जमी हुई हैं, दिल उड़े हुए हैं, कुछ होश नहीं है, दिल काबू में नहीं है। फिर फरमाया वअंजिर इन्नासा यौमा यातीहिमुल अज़ाबु फयकूल, और डराइए लोगों को। क्या कहा? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन से तुम इन्हें डराओ। और किनको डराओ? अन्नास, तमाम के तमाम लोगों को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, कभी जो है वो पहाड़ पे चढ़कर के इस पहाड़ के पीछे से तुम पे कोई हमला ना कर दे, कभी कुरान में आज आ गया वानजिर अशीर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कैसे डराते थे? कभी पहाड़ पर चढ़कर, कभी जो है कुरान में सूरह शोरा में आयत 214 में जब अल्लाह ने कहा वानजिर अशीरतकल अकरबीन, कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, तो रिश्तेदारों को दावत के घर में बुलाया और उनको जो है वो डराया। और रिश्तेदार कौन थे? जो कुफर कर रहे थे, जो आपकी जान के दुश्मन बन रहे थे, है ना। तो असल बात क्या है कि अल्लाह ताला ने जो है वो एक तरफ ये बताया सूरत इब्राहिम में कि लोग कुफर करते हैं, लोग शिर्क करते हैं, लोग बुतों की पूजा करते हैं, लोग जो हैं वो कलमा तैयबा और कलमा खबीसा का मतलब ही नहीं समझते, कभी जब्बार और अनीद बन जाते हैं। तो इनको बताइए कि माइन सदीद भी मिलेगा, इनको बताइए कि अजाबुल गलीज भी होगा, इनको बताइए कि वो बड़ा ही सख्त दिन होगा, इनको कयामत और आखिरत के दिन से डराइए। और मेरी प्यारी बहनों, उन लोगों में मैं और आप भी शामिल हैं। क्या वाकई हम अल्लाह पर वो सच्चा ईमान लाए हैं कि आखिरत और कयामत का खौफ जो है हमें खाना भुला दे, हमें सोना भुला दे, हमें कम से कम लड़ना भुला दे, हमें शिकवे और शिकायतें भुला दे। ये दिल और ये दिमाग और ये जिस्म जो है ये तो दुनिया की मोहब्बत में बेचैन है। उसने दिया क्या, उसने बुलाया क्या, वो लाया क्या, उसने ये पहना और मेरे पास नहीं है, और वो क्यों नहीं करता, मैं क्यों करूं। किसी औरत के 3 बेटे और हर बहू ये कहती है लो जी 2 दूसरे भी तो है ना, मैं ही रह गई हूँ, मेरे पास ही रहती है, वो मेरे पास रहना चाहती है। ये क्यों नहीं सोचती कि जन्नत है, जन्नत की सूरत में वो मेरे पास है, मेरी शौहर की माँ बाप या मेरे माँ बाप, और अगर वो मेरे पास होगी तो मुझे तो जन्नत मिल जाएगी। और जन्नत ख्वाहिशात से नहीं मिलती, आरजुओं से नहीं मिलती, जन्नत कुर्बानी, मेहनत, अजीमत, शहादत, इखलास के नतीजे में जो है वो मिलती है। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि जन्नत का जो सफर है वो मेहनतों का सफर है, और हमें इसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या करना चाहिए, मुशक्कत करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ये बात पता चलती है कि वो अल्लाह ताला कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को डराइए यौमा कयामत के दिन से, वो बड़ा सख्त होगा। यातीहुमुल अजाबू, उस दिन अजाब आएगा, वो दिन ऐसा होगा अजाब लिए हुए आएगा। मैं मसलसल 2-3 दिन से सुन रही थी कि आज स्नो स्टॉर्म आने वाला है, वो रात के वक्त शुरू हो जाएगा, वो सुबह 5 बजे शुरू हो जाएगा, वो 6 बजे शुरू हो जाएगा, क्लास बंद कर दें, क्लास होगी कि नहीं होगी। तो यानी हवा चलेगी, आंधी आएगी, बर्फ आएगी, लोग नमक दुकानों पे खत्म हो जाता है, ग्रोसरी करके घर भर लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि वो तूफान का दिन आने वाला है। और ये क्या है, जस्ट प्रिडिक्शन है, एक मशीन गोई है। और कभी जो ये ऐलान करते हैं तो कई दिन गुजर जाते हैं और उसका कई जो है वो नामो निशान नहीं होता, ऐसे होता है ना। लेकिन अल्लाह जिस दिन का ऐलान कर रहा है वो दिन आके रहेगा, यौम यातीहुमुल अजाब, अजाब को अपने अंदर लिए हुए आएगा। फयकूलु लज़ीना ज़लमू, बस वो कहेंगे उस दिन वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने ज्यादती की, जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने हुकूक अल्लाह और हुकूक इबाद अदा ही ना किए। और अपने दिल से पूछना चाहिए कहीं मैं तो नहीं हूं इसमें, जुल्म करने वालों में मैं तो नहीं हूं। और वो क्या कहेंगे, रब्बना अख़िरना इला अजलिन करीब, ऐ हमारे रब हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दे। बच्चे कहते हैं ना, टीचर आज पेपर ना ले, कल ले ले, वीकेंड में बड़े मेहमान थे, टीचर मुझे तो याद ही नहीं रहा था, है ना। बच्चे क्या कहते हैं, अम्मी अभी कुछ ना कहें, बस मुझे एक चांस और दे दें। मेरी प्यारी बहनों, वो दिन आएगा कोई सप्ली नहीं, कोई मेकअप टेस्ट नहीं, कोई चांस नहीं। इंसान कहेगा कि रब्बना अखिरना इला अजलिन करीब, थोड़ी सी मोहलत, ये करीब की थोड़ी सी मुद्दत और बढ़ा दे कि मैं जो हूं क्या करूं, अमल करूं, मैं क्या करूं कि मैं नेकियों में जो है वो आगे बढ़ूं। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि हमें जो है हमें क्या करना चाहिए कि हमें उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। और इंसान जब मोहलत मांगेगा तो कहेगा नुजीब दावतक व नत्तबिर रुसुल, बड़ा खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला बताते हैं कि इंसान उस दिन ये कहेगा कि तू थोड़ी सी मोहलत अल्लाह हमें और दे दे, हम तेरी दावत पर लब्बैक कहेंगे, नुजीब दावतक, हम तेरी पुकार को सुनेंगे, वनत्तबिर रुसुल, और रसूलों की पैरवी करेंगे। जैसे है ना कि अब हम टेस्ट की तैयारी करेंगे, अब हम पूरा सही सही पढ़ेंगे, बस एक चांस हमें और मिल जाए, मेरे तो टीचर अच्छे नंबर ही नहीं आए ना, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, मुझे तो ख्याल नहीं रहा था, बस एक चांस और ना, बस अब एक दफा और। अच्छा 10 पारों का रिजल्ट अनाउंस हुआ, मेरे तो कम आए हैं। अब देखिए जब 20 पारों का रिजल्ट अनाउंस होगा ना, तो जिस दिन 10 पारों का हुआ खुद हमने भी अपने बाजू पर चढ़ाए कि अब देखें कि क्या करते हैं। 2 नंबर से दूसरा फर्स्ट आ गया, 3 नंबर से वो आगे निकल गया, अब देखिएगा फिर क्या हुआ कि बस उस दिन वो जोश था हमें। और फिर 11वां हुआ, फिर 12वां हुआ, फिर 13वां हुआ, अब फिर जब 20वें पारे का रिजल्ट अनाउंस होगा फिर हमें होश आएगा कि ओ मुझे तो तैयारी करनी थी और मुश्किल तो थी नहीं और मैंने तो की नहीं, तो अब क्या करूं। अच्छा चलो अगले 10 पारों में, और मैं छोड़ देती हूँ क्लास, इतना थोड़ी मैं अब कर सकती हूँ, इतना भी क्या मुश्किल है ना। दुनिया के लिए क्या करते हैं और आखिरत के लिए क्या करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, कैसे मुशक्कत करते हैं। अच्छा दुनिया के लिए क्या किया कि अच्छा जो सेल लगती है तो सुबह सुबह जाऊं ना, हफ्ते की तो चीजें मिलती हैं। आज मैं 2 बजे आई हूँ, अगली दफा मैं 9 बजे आऊंगी, देखना ना सारी चीजें मिली कि ना मिली। अगली दफा 9 बजे पहुंच गए, सारी चीजें मुझे जो थी वो मिल गई। तो है यानी दुनिया के लिए हम वो तैयारी नहीं करते, दुनिया के लिए जो हम तैयारी करते हैं आखिरत के लिए हम वो तैयारी नहीं करते। तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, अपना जायजा लेना चाहिए, फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनसे पूछा जाएगा, अवलम तकूनू अक्सम तुम मिन कब्लू मा लकुम मिन जवाल, क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कसमें खा खा कर कहते थे कि हम पर तो कभी जवाल ही नहीं आना। अवलम तकूनू, क्या तुम वही तो नहीं हो, कुफर करने वाले, शिर्क करने वाले, नाफरमानी करने वाले, वादों को तोड़ने वाले, सताने वाले, जुल्म करने वाले, और कसमें खा खा कर कहते थे हमें तो मरना ही नहीं है। जो बहू बनती है उसको ये लगता है मुझे कभी सास नहीं बनना ना, और जो सास बन जाती है उसको ये लगता है कि मुझे कभी मरना ही नहीं है। है ना, क्या करते हैं हम कि बहू बने तो सास अच्छी ना मिली, सास बने तो फिर बहू अच्छी ना मिली, गोया कि हम हर हाल में हर दिनों में अच्छे ही रहना। तो जो अच्छे लोग होते हैं ना वो जिस भी रूप में हो, बेटी, बहन, भाभी, माँ, नंद, सास, बहू, वो हर रूप में नेकियां बखेरते हैं, इसार कुर्बानी करते हैं, सबर करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि मुझे हमेशा इसी तरह जवान रहना है और इसी तरह मुझे दौलतमंद रहना है। क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कसमें खा खा कर कहते थे हमें कभी जवान नहीं आना, क्या मतलब हमें मरना नहीं है। वसकन तुम फी मसाकिनिल्लज़ीना ज़लमू अन्फुसहुम, हालांकि तुम इन कौमों की बस्तियों में रह चुके थे, ज़लमू अन्फुसहुम, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया था, वतबैयना लकुम कैफ फअलना बिहिम, और देख चुके थे कि हमने उनसे कैसा सलूक किया, वदरबना लकुमुल अम्साल, और इनकी मिसालें दे दे कर हम तुम्हें समझा भी चुके थे। और यहाँ पर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये कहते हैं कि दुनिया में जो लोग जुल्म, ज्यादती, कुफर और शिर्क का मामला करते हैं वो ये समझते हुए करते हैं कि हिसाब किताब नहीं है, मरना नहीं है, आखरत नहीं है। और एक और हकीकत है कि जो जवान होते हैं वो ये समझते हैं हमें नहीं मरना, बूढ़ों को मरना है। जो सेहतमंद होते हैं वो समझते हैं बीमारों को मरना है ना। जो अमीर होते हैं वो ये समझते हैं कभी गरीब नहीं होना, जिनके पास आंखें हैं वो ये समझते हैं कि मुझे मतलब ये हमेशा मेरे पास रहेंगी ना, जिनके पास पांव है वो समझते हैं हमेशा इसी तरह चलेंगे ना, और जिनके पास टांगे हैं वो उस पर चलते हैं वो समझते हैं इसी तरह भागते रहेंगे ना इन टांगों के साथ। लेकिन फिर क्या होता है, एक छोटी सी गोली हमेशा के लिए जीते जागते इंसान को सुला देती है, एक चीचक का हमला सारे हुस्न को फना कर देता है, एक बीमारी जो है वो इंसान को निढाल करके रख देती है ना। एक अल्लाह की चोट, आसमानी हो या जमीनी, एक अल्लाह की चोट, अजाब का जरा सा असर जो है वो तो क्या करता है, आजमाइश बनता है, और कोई बोलना छोड़ देता है, कोई हिल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। पिछले दिनों एक औरत बता रही थी कि जबान का कैंसर हो गया एक औरत, और फिर वो फौत हो गया वो आदमी उसके बाद। फिर किसी ने बताया कि लंग्स का हो गया, पेट में फैल गया, एक ने बताया कि ब्रेस्ट हुआ और तब पता चला जब पूरे में फैल चुका था, किसी ने बताया कि आंख जाया हो गई, कुछ ऐसे ही चीज लगी और आंख जाया हो गई। और कैसे चीज लगी, दो बच्चे आपस में खेल रहे थे और स्टूडेंट थे मेरे, उस जमाने में प्रिंसिपल थी, और माँ बड़ी खूबसूरत बच्ची और माँ भी बड़ी खूबसूरत, और बच्चा बच्ची की लड़ाई हुई और बहन भाई के हाथ में जो पेंसिल थी ना वो बहन की आंख के डेले के अंदर जाके लगी, ये जो है पार्ट जिसे नजर आता है, आंख जाया हो गई, छोटी सी बच्ची नर्सरी में आती थी। तो जरा सी बात होती है और चीज जो है वो खत्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो आयत नंबर 45 जो है इसमें क्या बताया कि जो पिछली कौमें हैं उनसे भी इबरत हासिल करने चाहिए कि पहले वो आबाद थे, अब तुम आबाद हो, और उनके घर खंडर बन गए, है ना, उनके घर खंडर बनकर तुम्हें दावते फिक्र दे रहे हैं कि वो भी जो थे वो ऊंचे ऊंचे महल बनाने वाले, चट्टानों को तराशने वाले, वो सब कहाँ चले गए, और एक वक्त ऐसा तुम पे भी आ सकता है ना। और इससे क्या बात पता चलती है, نہ گورے سکندر نہ ہے کسرے دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. ہر ڈاکٹر ہر ہاسپٹل پہ موت آتی ہے، ہر محل کے اندر موت آتی ہے، جوان میں بھی آتی ہے، بچے میں بھی آتی ہے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ہمارے پاس اب مہلت کتنی ہے، اگر 40-45 سال ہو گئے تو کتنے دن اور باقی ہیں، اب کتنے دن اور عیش کریں گے. تو کیوں نہ ہم سب جو ہے وہ آخرت کی تیاری کریں. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مثالوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. تو اس آیت میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو پچھلی قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، تو کس طرح انکار کیا؟ کہ ایسی ہیلے اور ایسے مکر انہوں نے کیے کہ ان کی مکروں سے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ ہی جو تھے نا وہ ٹل جاتے. تو اس سلسلے میں آپ یہ بھی دیکھ سکتی ہیں کہ مکر سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے. جیسے سورت مریم آیت 1991 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ اللہ رحمان کی اولاد ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی قوموں نے ایسی ایسی چالیں چلی اللہ کے انکار کے لیے، پیغمبروں کے انکار کے لیے، کہ ان کی چالوں سے پہاڑ بھی ٹل سکتے تھے. یہ ان جو ہے نا، ان کے معنی نہیں کے بھی ہوتے ہیں، اور ان کے معنی جو ہیں وہ کہ جو ہے وہ نہیں کے بھی ہوتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں کہ شرطیہ بھی ہوتے ہیں، کہ جیسے کسی چیز کا جو ہے وہ ہو جانا. تو اگر اس کے معنی یہ لیں کہ نہیں، تو مطلب کیا ہے کہ انہوں نے چالیں تو بہت چلی مگر ان کی چالوں سے پہاڑ ٹل نہیں سکتے تھے. جیسے مکہ والے چاہتے تھے نا کہ ہم تب مانیں گے کہ پہاڑ ہٹا دیے جائیں، مکہ کی وادی کو بڑا کر دیا جائے. مکہ والے جو تھے انہوں نے کیا چالیں چلی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، ان کو کسی جیل خانے میں ڈال دیا جائے. تو یہ ان کی چالیں تھیں نا. تو پہلی قوموں نے بھی پیغمبروں کے ساتھ جو تھی وہ چالیں چلی تھیں. اور وما کا روپ، اور جو حضرت نوح علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ بڑی چالیں چلی. یہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی چالیں چلی. تو یہاں پہ بھی اس سے مراد کیا ہے کہ معنی یہ ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، اور دوسرے معنی کیا ہیں کہ آسمان جو ہیں وہ ان مکرہم، اور نہیں ہیں ان کی چالیں کہ پھٹ جاتے ان سے پہاڑ، کہ ان کی چالوں سے پہاڑ پھٹ نہیں سکتے تھے، ورنہ ایسی چالیں تھیں کہ پہاڑ پھٹ جاتے. تو یہ معنی جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ مراد ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے محاورے کے طور پر یہاں پہ یہ بات کہی ہے کہ ایسا ہو تو سکتا تھا، یعنی اتنی زبردست چال تھی کہ ناممکن ممکن ہو جاتا، لیکن حقیقت میں ایسا جو تھا وہ ہو نہیں سکتا تھا. تو مقصد کیا ہے کہ کفار جو ہے ان کو یہ بتانا کہ اللہ جو ہے نا وہ تمہاری چالوں کو ختم کر سکتا ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ہے نا، کہ ان کی چال کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل جو ہے وہ ختم کر کے جو ہے وہ رکھ دیا. پھر فرمایا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. تو مقصد کیا ہے، بات رسول اللہ سے کہی جا رہی ہے، سنایا کافروں کو جا رہا ہے، مخالفین کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، کافر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اور جو آپ کو ستانا چاہتے ہیں اور آپ کا انکار کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو رسول کی دعوت یا اس کا مشن جو ہے وہ کامیاب نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا، ان کی چالیں ختم ہوں گی اور رسول جو ہے اس کا مشن جو ہے وہ ترقی کرے گا، اللہ دین اسلام کو پورا کرے گا. کیوں؟ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ جو ہے وہ زبردست بھی ہے اور انتقام لینے والا ہے. عزیزن یعنی غالب ہے, کسی کو پکڑ کر ذلیل کرنے والا ہے. زنتقام نقما سے, کہ ایسے انتقام لینا کہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ عبرت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ قیامت آئے گی اور اللہ جو ہے وہ ہر ایک کو سزا یا جزا دے گا, تو یہ اور جو ظالم ہے اللہ ان سے زبردست انتقام لے گا. پھر فرمایا اب ڈراؤ لوگوں کو اس دن سے, بار بار یہ ذکر ملتا ہے کہ لوگوں کو قیامت سے ڈرایا جائے. کیوں؟ یوم تبدل الارض غیر الارض, جس دن یہ زمین جو ہے وہ بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, کہ جس دن زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے. تو قیامت میں زمین و آسمان ختم نہیں کیے جائیں گے, بلکہ کیا کیا جائے گا, موجودہ نظام جو ہے درہم برہم کر دیا جائے گا. نفخ سور اول اور نفخ سور آخر کے درمیان میں ایک مدت ہوگی, جسے اللہ ہی جانتا ہے, پہلے سور اور آخری سور کے درمیان میں, کہ زمین و آسمانوں کی موجودہ حیثیت بدل دی جائے گی. تو بدل بدل دینا, اس سے مراد کیا ہے, یعنی کسی چیز کو جو ہے وہ بدل دینا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جو ہے ظاہری طور پر بدلنا, اور دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو جو ہے وہ معنوی طور پر جو ہے وہ بدل دینا. تو یہاں پہ جو ہے وہ زمین کی جو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, تو اس سے مراد کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ ظاہری طور پر جو نظر آتی ہے نا, زمین ویسی نہیں رہے گی. زمین کے اندر پہاڑ اور درخت اور ٹیلے اور اس کے اندر جو بلندی اور پستی ہے, اونچا نیچا, یہ سب جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. آپ یہی دیکھیں کہ سب سے اہم تبدیلی کیا ہوگی, کہ یہ زمین 1/3 ہے, اور یعنی زمین کا جو 1/3 ہے وہ خشکی ہے, اور 3 حصے زمین پر پانی ہیں, وہ پانی ختم کر دیا جائے گا, سمندروں کو پاٹ دیا جائے گا, خشک کر دیا جائے گا. تو 3 گنا حصہ جہاں پانی ہے وہ بھی خشکی بن جائے گا, اور وہ زمین جب تبدیل ہوگی یہ زمین, تو کم از کم 4 گنا جو ہے وہ بڑھ جائے گی, اور بالکل ایک دسترخوان کی طرح ہوگی. کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ دسترخوان کی طرح ہوگی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء, کہ قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی, اس میں کوئی جھنڈا یا علامتی نشان نہیں ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جب یہ آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ جب اس میں تبدیلی ہو رہی ہوگی تو لوگ کہاں پہ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر, صراط پر. اور یہودی نے آپ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ لوگ اس دن جو ہے وہ کہاں ہوں گے, تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے. اسے ہی مسلم کی روایت ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں کیا بات فرمائی, کہ قیامت کے روز لوگ ایک ایسی زمین پر اٹھائے جائیں گے جو ایسی صاف اور سفید ہوگی جیسے میدے کی روٹی, اس میں کوئی علامت, مکان, باغ, درخت, پہاڑ, ٹیلہ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا. پھر ایک اور حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ زمین اس طرح کھینچی جائے گی جیسے چمڑے کو کھینچا جائے, جس سے اس کی سلوٹیں اور شکر نکل آئیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ دسترخوان بچھاتی ہیں تو چادر بچھاتی ہیں تو پھر بھی سلوٹ اس پر رہ جاتا ہے نا, تو آپ اس کو پھر کھینچ کھینچ کے نکالتی ہیں, لیکن اس دن اللہ تعالیٰ اس کو بالکل کھینچ کر سیدھا بچھا دیں گے. سارے انسان جو ہیں وہ زمین پر آ کر اکٹھے ہو جائیں گے, اور وہ وقت ہوگا حساب کتاب کا, تاکہ اس دن جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے وہ لیا جا سکے, اور حساب کتاب کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو کھڑا کیا جا سکے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں اس دن سے ڈرو, یوم تبدل الارض غیر الارض, کہ جس دن جو ہے یہ زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے, ظاہری حالت میں ان کی تبدیلی ہو جائے گی. وبرزوا للہ الواحد القہار, اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. ساری دنیا और आप देखें बरजू क्या कि छुपी हुई चीज थी, उसको खोल कर रख दिया जाए, कोई चीज थी उसको कवर किया हुआ था, फिर उसे से चादर हटा दी जाए। कहीं अल्लाह ताला, अब यहां पे अल्लाह ताला कह रहे हैं वह बरजू लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अल्लाह ताला आप नजर नहीं आते ना, छुपे हुए हैं ना, उस दिन अल्लाह ताला नजर आएंगे। यौमा यकूमुन्नासुलि रब्बिल आलमीन, उस दिन सारे इंसान अल्लाह के सामने खड़े होंगे। फाइव बिफोर फाइव, पांच चीजों से पहले पांच चीजों को गनीमत जानना चाहिए। इब्ने आदम का पांव सिरक नहीं सकता जब तक कि वो जवाब ना दे दे कि जवानी को किन कामों में जो है वो पुराना किया, इल्म कहां से हासिल किया और उस पर कितना अमल किया, माल कहां से कमाया, कौन से जराए थे हलाल के हराम, और कहां खर्च किया, है ना, और जिंदगी में जो है वो मौत की आखिरत की कितनी तैयारी की। तो हमें क्या करना चाहिए, फाइव बिफोर फाइव, यानी इससे पहले कि पूछा जाए कि जो है वो तुम दुनिया में क्या करते रहे थे, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा इल्म, तुम्हारा अमल, तुम्हारे हालात कैसे थे, तो हमें उसकी जो है वो तैयारी करनी चाहिए। एक हदीस में आता है पहला मुकदमा जो पेश होगा वो दो पड़ोसियों का होगा, कि दो पड़ोसी जो है ना उनको पेश किया जाएगा। कता रहमी, जो रिश्तेदारों के हकूक अदा नहीं करते उसको जो है वो कता रहमी, पुल से रात से इंसान चलने लगेगा ना, एक तरफ आप सोचे अफरा तफरी जमीन बदली जा रही है, दूसरी तरफ पुल सिरात के नीचे जहन्नुम है, और जहन्नुम भी ऐसे नहीं कि नीचे बस आग जल रही है और नजर आ रही है। सही मुस्लिम की हदीस में है कि जहन्नुम जो है ना आंकड़े नहीं, जैसे ऐसे कांटे होते हैं जो लोहे लोहा जैसे लगा हुआ हो और ऊपर को निकला हुआ जगह जगह से, और कुछ चलने वाले को जिनको उसने पकड़ना होगा ना बस खींच कर अंदर ले जाएगी, अपने अंदर ले जाएगी, और अंधेरा होगा और रोशनी ईमान के मुताबिक होगी, नूर जिससे इंसान चलेगा ना, हत्ता कि एक शख्स दूसरे के रोशनी में चल रहा होगा, बीच में दीवार आ जाएगी, क्योंकि वो कहेगा थोड़ी सी रोशनी मुझे भी दे दो कि मैं पुल से रात से गुजर लूं, तो कहेगा नहीं अपना नूर अपने पास तलाश करो, मैं नहीं तुम्हें दे सकता। वो फिर भी उसे मांगेगा थोड़ा सा दे दो, फिर एक दीवार ही आ जाएगी, गुप्त अंधेरा, और एक तरफ अंधेरा है नीचे जहन्नुम है, और दूसरी तरफ जो उसके अमल हैं, अगर कुर्बानी की थी तो सवारी बनकर आ जाएगी, अगर कतर रहमी की थी तो कतर रहमी उसको पकड़ लेगी कि तुम जा नहीं सकते, उसके रास्ते में रोड़ा जैसे गाड़ी चल रही हो और आगे पत्थर खड़ा कर दिया जाए, या किसी ने इमानत में खयानत की थी तो वो पुल से रात पे उसको जो है गुजरने नहीं देगी कि ये खयानत करता था। तो असल बात यह है बरजू लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, सब के सब अल्लाह वाहिद कहार के सामने बेनकाब हाजिर होंगे। एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी, सारी जिंदगी अपने नफ्स की पूजा करते रहे और लोगों को राजी करते रहे, रस्म और रवाज दुनिया, कनाडा में आए तो कनाडा वाले जो हैं यहाँ पे जो है कैसे रहते हैं वैसे रहना है, भूल गए कि हम मुसलमान थे, हमारी नस्लें जो थी वो भूल गई। कहा वतरल मुजरिमीन यौमाइज़िन मुकर्रनीन फिल असफाद, उस रोज तुम मुजरिमों को देखोगे, यौमाइज़िन कयामत के दिन, मुकर्रनीना वो रस्सियों में जकड़े हुए होंगे, उनको जो है वो रस्सियों से बांधा हुआ होगा उस दिन, जो मुजरिम हैं उनको अल्लाह ताला की तरफ से बांधा हुआ होगा। अब आप देखें, कभी आपने देखा हो मुजरिमों को किसी की ज्यूरी ड्यूटी लगी हो, कि मुजरिम जब आते हैं कोर्ट में तो कैसे आते हैं, बाज़ औक़ात अभी फैसला भी नहीं हुआ होता कि ये वाकई ये मुजरिम है, लेकिन हथकड़ियां लगी हुई हैं, एक मुजरिम के लिए दस दस पुलिस के लोग। कभी आप गुजर रहे हो और आपने पुलिस की भारी नफरी को देखा हो कि मुजरिमों को पकड़ा हुआ होता है ना, और एक दुनिया के मुजरिम और दुनिया की पुलिस, और मेरी बहनों वो मुजरिम अल्लाह के मुजरिम और अल्लाह की पुलिस, अल्लाह का पकड़ना है ना। और कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है जब मुजरिमों को पकड़ेंगे तो कुरान क्या बताता है कि जमीन अल्लाह की जो है ना, जमीन उस दिन बोलेगी, यौमाइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन क्या होगा, सूरह ज़िलज़ाल में क्या है, हाँ तो उस दिन जो है जमीन अपनी खबरें बयान करेंगी, और जमीन बोलेगी कि किसने मेरे ऊपर क्या किया था ना, आज तो खिड़की बंद कर ली, दरवाजा बंद कर लिया, कमरा बंद कर लिया, लेकिन उस दिन जो है जमीन बोलेगी। जैसे आप देखें कि जो है पता चले कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मोहतात होके बोलते हैं ना, और भूल जाते हैं कि जमीन रिकॉर्ड कर रही है, भूल जाते हैं कि जमीन रिकॉर्ड कर रही है ना। तो मुजरिमों को तुम उस दिन देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं, फिल असफाद, मुकर्रमीन के मानी भी हैं कि बांधे हुए रस्सियों में जकड़े हुए, और असफाद जो है इसके मानी क्या है कि लोहे का तौक या जंजीर है जिससे कैदियों को पकड़ा हुआ होता है। कभी क्या होता है कि सिर्फ हाथ को हथकड़ी होती है, कभी जो होता है पांव को भी होती है, आगे भी लोग होते हैं पीछे भी होते हैं, गाड़ी जो होती है ना वो भी खास बंद होती है कि नजर ही नहीं आता जिसमें मुजरिमों को लेके जाया जाता है। जेल भी जितना बड़ा मुजरिम होता है ना उसके मुताबिक दुनिया में भी जेलें भी मुख्तलिफ होती हैं, कोई मिल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, और ऐसे कि जहां सूरज की रोशनी भी ना आए, हवा भी ना आए, कोई परिंदा भी पर ना मार सके। तो वहां जो है अल्लाह के मुजरिम उनको जंजीरों में जकड़ा हुआ होगा। सराबीलहुम मिन कतिरान, कारकूल के लिबास पहने हुए होंगे। अब ये लफ्ज जो है ये कुर्ते के लिए भी इस्तेमाल होता है और लिबास के लिए भी, और दुनिया के लिबास की फिक्र रहती है, कभी वो ब्रीजा आ जाता है चांदी वाला और चमक वाला, कभी मोतियों वाला, कभी सितारों वाला, कभी धागे वाला, कभी जो है वो गोल्ड गोल्डन होता है और कभी वाइट गोल्ड आ जाता है ना। और बाल जो हैं काले दिए तो कहते हैं नहीं हरे कराने हैं, अगर अल्लाह ने जो है वो बूढ़े दिए तो कहते हैं नहीं मुझे जो है वो पीले कराने हैं, है ना। तो दुनिया में कभी बालों का हुसन, कभी आंखों को, आंखों आंखें जो अल्लाह ने दी हैं बड़ी खूबसूरत है हमारे पास, लेकिन कोई नीली, कोई पीली, कोई ब्राउन, हम चाहते हैं कि हम खूबसूरत लगे। लोशन कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कपड़े कैसे, मोटे होते हैं कहते हैं नहीं ऐसी फिटिंग से पहनूं पतली लगूं मैं, भाई जब मोटे हैं तो फिर मोटे ही हैं तो फिर क्या फिक्र है कि अगर मोटे नजर आ जाएं तो, है ना। लेकिन नहीं, वो लंबे रुख का डिजाइन होगा तो पतली लगूंगी, बारीक फिटिंग वाला पहनूंगी तो पतली लगूंगी। और एक औरत एक दिन कहने लगी कि चाके लंबी रखे ना और यह यही जगह तो जरा मोटी होती है, तो इससे जो है ना फिर इंसान जो है वो पतला लगता है ना। तो कभी मोटे, कभी ये फिक्र है कि स्मार्ट लगे, कभी पतले लगे, कभी खूबसूरत लगे, कभी लंबे लगे, कभी हसीन लगे, मुस्कुराहटें लेडी डियाना की हमें आनी चाहिए, हेयर कट लेडी डियाना का, है ना। तो इसी में जिंदगी गुजार दी, लिबास तराश खराश और हुसन में, और भूल गए कि कब्र में क्या होगा, भूल गए कि आखिरत में क्या होगा। और कहीं अल्लाह ताला कहते हैं सूरत हज आयत 19 में कि उनके लिए आग के लिबास काटे जाएंगे, यहाँ कहते हैं अल्लाह ताला तारकूल के लिबास उन्होंने पहने होंगे। कतिरान जो है हर जलने वाले मादे को कहते हैं जो गलीज हो, बदबूदार, गाढ़ा और स्या स्या धुआं छोड़ता हुआ, और दर्जा हरारत आग का बहुत तेज हो। मैं सोच रही थी इस बात पे जब इसको पढ़ रही थी कि सराबीलहुम मिन कतिरान के गोया के तारकूल के लिबास होंगे, सिर्फ आग के नहीं बल्कि बदबूदार स्या धुएं, गाढ़े धुएं के और पिघले हुए तांबे के लिबास होंगे। बास कहते हैं कि पिघला हुआ तांबा, आप देखें आप जो है वो पानी लग जाए गर्म हाथ जलता है, और हंडिया पका रहे हों तो उसका वो धुआं गर्म लग जाए, भाप लग जाए तो जल जाते हैं। और लेकिन ये कि अगर जो है खोलता हुआ घी गिर जाए, अगर जो है वो दूध गिर जाए, अगर जो है ये कोई मेल्ट हो के बर्तन गिर जाए यानी तांबा गिर जाए तो वो तो अंदर से हड्डियां तक खींच के ले जाता है ना, कि बर्न कौन सा स्टेज का है वो, है हाँ सेकंड डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है, थर्ड डिग्री है, और फिर वो कहते हैं कि सेकंड के बाद है तो फिर जीना जो है वो मुश्किल है ना। तो आप सोचें कि लिबास उनको पहनाए जाएंगे, लिबास ये नहीं कि कोई चीज लगी और उसे हटा दी जाए, कुछ लगा दिया जाए, नहीं, तारकूल के लिबास पहने होंगे। वतगशा वजूहहुम नार, और आग के शोले उनके चेहरों पर छाए जा रहे होंगे। और आपको पता है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने खास तौर पर चेहरे का जिक्र किया, जिस्म के अंदर सबसे अहम चीज चेहरा है। कोई बैठा हुआ हो तो कहते हैं चेहरा मेरी तरफ करो, हुसन की बात हो तो कहते हैं चेहरा अच्छा लगना चाहिए, दुल्हन के भी तो चेहरे को सजाते हैं ना, चेहरा देखकर लड़की पसंद करते हैं, चेहरा कैसा लगता है, वो चेहरा वो मुंह के अल्लाह की आयात सुनाई जाती थी तो रुख मोड़ लेते थे, वो चेहरा जो अल्लाह ताला से बेतनाई बरतता था, कुफ्र करता था। फतगशा वजूहा हुमुन नार, आग के शोले उन चेहरों पर छा रहे होंगे। और आपको पता है कि चेहरा इतना नाजुक होता है कि यहाँ पे तकलीफ ज्यादा पहुंचती है, इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मारो तो चेहरे पे नहीं मारो, और चेहरे का खास तौर पे जिक्र किया कि उनके चेहरे आग उन पर छाई हुई होगी, गशी कोई बेहोश हो जाए, यानी गोया के आग ने चेहरों को घिराव किया हुआ होगा। आप तसव्वुर तो करें इस बात का। हम खड़े होते हैं ओवन के सामने और सिर्फ ओवन ही आप जला लें घर में, यानी ऊपर का चूल्हा नहीं नीचे का ओवन गर्म जलाएं, पूरे घर में एक हीट हो जाती है। और कहते हैं मेहमान आने वाले हैं, इतनी गर्मी लग रही है, और कभी पंखा चलते हैं, कभी एसी को देखते हैं कि एसी चल रहा है, लग रहा है एसी नहीं चल रहा ना। तो वहां पे एसी नहीं है, वहां पे कोई ठंडक नहीं है, कोई भागने की जगह नहीं है। और ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह के नाफरमानों के लिए। क्यों अल्लाह ताला ऐसा करेंगे? यजी अल्लाह कुल्ल नफ्स मा कसबत। ये इसलिए होगा कि अल्लाह हर मुतनफ्फिस को उसके किए का बदला दे, हर एक को उसके अमलों की सजा और जजा दे। कुल्ल नफ्स मा कसबत, हर शख्स ने क्या किया, सास ने क्या किया, बहू ने क्या किया, माँ बाप ने क्या किया, औलाद ने क्या किया, एक हमसाई ने क्या किया, दूसरी ने क्या किया, दोस्त ने क्या किया, दूसरी दोस्त ने क्या किया, है ना। हर नफ्स को उसके किए का पूरा पूरा बदला जो है वो मिलेगा। जिसने अच्छा किया तो उसको अच्छा मिलेगा, जिसने बुरा किया तो उसको जो है वो बुरा मिलेगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो है वो एक दफा जहन्नुम को याद करके रोने लगी, पूछने लगी, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे उस वक्त याद करेंगे, मुझे याद रखेंगे? आपको पता है हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत करते थे। एक सिर्फ ये कंवारी बीवी थी, सबसे छोटी उम्र वाली, बहुत खूबसूरत, हुमैरा इनका लकब था, सुर्ख सफेद के लिए आता है अहमर से। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मोहब्बत से आयश कहते थे। जहां जिस गिलास और कप से पानी पीती थी, जिस जगह मुंह लगा के, आपने मोहब्बत में उस जगह मुंह लगाकर पानी भी पिया। और कहते थे सारे बीवियों के हकूक में बराबरी करता हूं, लेकिन ये दिल आयशा को ज्यादा चाहता है, ऐ अल्लाह तू मुझे इस पर पकड़ ना करना। और वो आयशा बैठी रो रही हैं, रो रही हैं जिनका निकाह आसमानों पे कर दिया गया। आपको ख्वाब में दिखाया गया कि एक लिपटी हुई चीज है, खोला तो आयशा, और वो आयशा बैठी रो रही हैं। तो चुप नहीं कराया ये कह के कि तुम्हें जहन्नुम की आग को बैठी याद करके रो रही है, कह रही है अल्लाह के नबी क्या उस वक्त आप मुझे याद करेंगे, कुछ करेंगे? कहा कि नहीं आयशा, तीन मौके ऐसे हैं कि कोई किसी को याद नहीं करेगा, जब जो है वो अमाल तोले जाएंगे, कोई किसी को नहीं पहचाने का ना। आज कहते हैं कि मेरा शौहर नहीं चाहता ना, इसलिए मैं बुरका नहीं पहनती। कोई कहते हैं मेरे माँ बाप नहीं चाहते। कोई कहते हैं मेरे बच्चे नहीं चाहते ना, इसलिए मैं इतना मुसलमान नहीं होना चाहती, है ना। कोई शौहर, कोई बीवी, कोई बच्चे, कोई वालदैन, कोई जिगरी से जिगरी दोस्त काम नहीं आएगा। तो कहा कि जब अमाल तोले जा रहे होंगे। दूसरा ये कि जब अमाल नामे जो हैं वो पकड़ाए जाएंगे, हर शख्स को ये फिक्र होगी, पता नहीं मेरा दाएं हाथ में आता है कि बाएं हाथ में, कोई किसी को होश नहीं होगा, है ना। तो अमाल का तोला जाना, नामाए अमाल का पकड़वाया जाना, और तीसरा जो है वो जहन्नुम, यानी हिसाब किताब के साथ ही फिर किसी को जो है वो अल्लाह ताला उसके लिए फैसला कर देना। तो अब वो दुनिया में बैठी हुई जहन्नुम को याद करके जो है वो रो रही हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आयशा मैं तेरे उस पर कुछ भी काम नहीं होगा, आऊंगा। और एक दफा आपने अपने सारे रिश्तेदारों को कहा कि ए अब्दे मनाफ, ए आले कुरैश, ए हाशिम वालो, ए मेरी बेटी फातिमा, ए मेरी फुफो सफिया, दुनिया में जो चाहो मुझसे ले लो, लेकिन आखिरत में मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। कोई पैगंबर, और पिछली सूरतों में आपने पढ़ा कि वक्त का पैगंबर अपने बेटे को ना बचा सका, अभी आपने पढ़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए मग़फ़रत की जो है उन्होंने दुआ करना छोड़ दी कि अल्लाह ने मना कर दिया। फिर आपने ये भी पढ़ा कि अपनी बीवियों को ना बचा सके, कहा कि चले जाना लेकिन बीवी पीछे रह जाएगी। तो ये है कि हर एक को अल्लाह उसके अमल का पूरा पूरा बदला देगा। माँ का सबक, क्या उसने कमाई की? हम समझते हैं पैसे डॉलर कमाई है हमारी, हम क्या कहते हैं कि शोहर जो कमाता है ये थोड़ा मैं भी कमाई करने लग जाऊं। और याद रखें, जितना ज्यादा कमाएंगे उतनी हवस बढ़ेगी। ज्यादा दौलत और डॉलर से जो है वो पूरा नहीं पड़ता जब तक के दिलों में कनात ना हो जाए। और कमाई शोहर की में कनात होती है, और बरकत शोहर की कमाई में होती है, क्योंकि अल्लाह ने शोहर को कमाने वाला बनाया, कवाम बनाया, और बीवी के जिम्मे घर और बच्चों की तरबियत की। और जब बीवी खुद कुरान पढ़ेगी, उसके सीने में कुरान आएगा, तो वह अपने बच्चों को सिखाएगी। मर्द भी कमाए, औरत भी मर्द बन जाए, जबकि अल्लाह ने औरत को, औरत नाजुक बनाया, शीशे के आबगीने बनाया, उसके अंदर نرمی، رحم دلی، محبت، جذبات کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا تاکہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے. اور یہاں پہ تو عجب ہوس ہے، عجب مغرب کی دنیا کا حال ہے، فیملی سسٹم سکیٹرڈ ہے، ختم ہے، اور ہر شخص بھاگ رہا ہے. ماں باپ اولڈ ہاؤسز میں، بچے بیبی سٹنگ اور ڈے کیئر میں، مرد بھی کمائی کر رہا ہے، عورت بھی کمائی کر رہی ہے، اور یہ ہے مغرب کا حال. اور اب یہ شعلے ہمارے گھروں پہ بھی اثرات لا رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سوچنا ہے کہ کیا میں کمائی کر رہی ہوں، میں کتنا اللہ کو یاد کرتی ہوں، کتنی آخرت کی تیاری کرتی ہوں. اور ہم نے زندگیاں ضائع کر دی، جوانیاں ضائع کر دی، کس میں؟ ڈگریاں حاصل کرنے میں. میں کیوں کہہ رہی ہوں ضائع کر دی؟ اس لیے کہ ایم اے کرنے میں، ڈبل ایم اے کرنے میں، ڈگریاں لینے میں، جو ہم نے لی ڈگریاں، آج وہ ہمیں کیا فائدہ دے رہی ہیں اگر ہم آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، اگر ہم رب کو یاد نہیں کر رہے، اگر ہم جو ہے استغفار نہیں کر رہے، اگر ہم جو ہے ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے، اگر ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے، شوہر کی عزت نہیں ہے، بچوں سے پیار نہیں ہے، تو کیا فائدہ ان ڈگریوں کا اور اس ایجوکیشن کا؟ تو اصل ایجوکیشن کیا ہے؟ جو ہمیں رب کی یاد دلائے، جو آخرت کی فکر پیدا کرے، جو ہمیں مسلمان بنا دے، جو ام سلیم بنا دے، جو بی بی ہاجرہ بنا دے، پھر میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. مکہ کے اندر، وادی کے اندر کوئی کھانا پانی نہیں ہے، شوہر چھوڑ کر چلے آئے، کوئی انسان نہیں ہے. کہتی ہیں اچھا اگر رب کا فیصلہ تو رب ضائع نہیں کرے گا، اور ہم ہیں کہ روتے روتے جو ہے روتے رہتے ہیں کہ ماں باپ نے کہاں شادی کر دی، شوہر کیسا ہے، ہم کیا کریں. دنیا کے لیے روتے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات کے لیے روتے ہیں کہ میں نے قرآن نہیں اب تک پڑھا نا، مجھے قرآن نہیں آتا نا، بی بی ہاجرہ کا کردار نہیں ہے، بی بی مریم کا کردار نہیں ہے، بی بی ام سلیم، بی بی فاطمہ، بی بی خدیجہ کا کردار نہیں ہے رضی اللہ عنہن اور علیہ السلام. تو ہم میں سے ہر ایک نے دیکھنا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا. اور میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کو خود سب کو پتا ہے کہ زندگی بہت تھوڑی ہے. اب ہم اپنی زندگی کی نا وہ جو سٹیج تھی نا، جس کے 40 سال کا جو ہو جائے اور پھر وہ نہ سمرے اور اپنے عملوں کو نہ بدلے، تو اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے پاس کوئی ایسا بہانہ نہیں ہوگا کہ جو اللہ کے دربار میں انسان عذر پیش کر سکے اور کہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دینا. اس کے پاس اگر کوئی عذر نہیں ہوگا جسے وہ پیش کرے اور اللہ کی پکڑ سے بچ سکے نا. اب اٹھنا چاہیے، نیند سے بیدار ہونا چاہیے، نیند کو کم کرنا چاہیے. اور ایک شخص سے بات ہو رہی تھی، اس نے حرم میں جا کر یہ دعا کی کہ اللہ تو میرے کھانے کی محبت مجھ سے کم کر دینا، میری نیند مجھ سے کم کر دے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں، ان کو کھانے کی فرصت نہیں ملتی، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کیا پکا اور کیا نہیں. وہ کہتے ہیں بس کچھ لکمے میں ڈال لوں کہ میں جسے جیت سکوں. اور کچھ ہم جیسے بدنصیب ہوتے ہیں جو کھانے کے لیے جیتے ہیں، کچھ اس لیے کھاتے ہیں کہ جیئیں تاکہ اللہ کی بندگی کریں. اور کچھ ہم ہیں کہ گھر سجانے کے لیے جی رہے ہیں، لڑنے کے لیے جی رہے ہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. کپڑے ہی ہماری جو ہے وہ محبت ہے. جو جوڑا کوئی دے دے تحفہ، یہ بھی میں نے سینا ہے. کسی کا رنگ اچھا لگتا ہے، کسی کا ڈیزائن اچھا لگتا ہے، کوئی ویسے ملائم لگتا ہے، اٹیچ ہی بھرے ہوئے ہیں. ابھی کوئی فیملی یہاں سے گئی، موو ہوئی، اور کہتے ہیں کہ پچھلے 2-4 دفعہ سے جو پاکستان سے میں آئی تھی، کہتی ہے اٹیچ ہی نہیں کھولے، اتنے کپڑے ہیں میرے پاس، نہ پہن کے ہی نہیں دیکھے، اب میں کیا کروں. اور یہ اٹیچ ہی اگر کھولنے کی نوبت ہی نہ آئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے نا. اور جو کپڑے ہیں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اللہ کو کیا جواب دیں گے. لیکن قرآن کیوں نہیں کھولتے نا، انہیں کے دھونے، سلانے، پہننے، استری کرنے، سجانے بجانے، میں کیسی لگ رہی ہوں. اور مجھے بڑی اچھی یہ بات لگتی ہے، آپ کسی پارٹی میں چلی جائیں، آپ ضرور اپنا جائزہ لیجیے گا، ہر ایک کو یہ فکر ہو رہی ہے میں کیسی لگتی ہوں. ہر ایک یہ فکر کرتا ہے میں کیسی لگ رہی ہوں، اس کو یہ نہیں لگتی فکر کہ آپ کیسی لگ رہی ہیں. تو یہ فکر کریں کہ میں اللہ کی نظروں میں کیسی لگ رہی ہوں. کیوں؟ کلو نفس ما کسبت، ہر شخص جو کمائی کر رہا ہے، لیجزی اللہ، اللہ اس کی اس کو جزا دے گا. لیجزی اللہ کلو نفس ما کسبت. پھر آگے والی حصہ بہت ڈرانے والا ہے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی، اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. کیسے اللہ حساب لیتا ہے؟ آفس گیا تو واپس ہی نہ آیا، سویا تو پھر جاگا ہی نہ. عورت بیٹھی بھی تھی، بچوں سے بات کر رہی تھی، میری دوستوں کی والدہ، یہ یونیورسٹی کے زمانے کی بات ہے، اور وہیں سر لڑک گیا، وہیں مر گئی. بچے پاس تھے، بیٹیاں پاس تھیں، ہے نا. اور جو ہے وہ نیو یارک میں مجھے ایک میت کو نہلانے کا اتفاق ہوا. شوہر آفس گئے ہوئے تھے اور بچے جو تھے وہ اسکول گئے ہوئے تھے، اور ویکیوم کر رہی تھی، ویکیوم کرتے گری، क्या हुआ उसको, फिर उसके बाद वो कुछ महीने हॉस्पिटल में रही, और जिस्म पर जैसे बेड शोर, जिस्म पर उसके निशान पड़े हुए थे, जो जब उसको नहलाया तो मैयत नहलाना वो नहला ही नहीं जाती थी, और लोगों से जानते नहीं थे, आम कोई औरत ही, और पूछा तो पता चला कि वो बस वैक्यूम कर रही थी और गिरी, और फिर उसके बाद आज तक उसको होश नहीं आई ना। फिर क्या होता है, थोड़े दिनों बाद शोहर दूसरी शादी कर लेता है, फिर क्या होता है, बच्चों की शादियां हो जाती है, बच्चे अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। लोगों, ये वक्त मुझ पर और आप पर भी आएगा ना, अल्लाह ताला जो है वो जल्दी हिसाब लेगा, मौत आएगी तो फिर हम क्या करेंगे। आखिरी आयत 52 जो है, ये सीरत सूरत इब्राहिम का मरकजी मजमून है, निचोड़ है। इसमें कुरान के नाजिल करने के 3 मकसद बताए गए हैं। हाजा बलागुल लिन्नास, ये एक पैगाम है तमाम इंसानों के लिए, और ये होमवर्क है बाप का कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम, अपने और बेगाने, घर वाले, रिश्तेदार और जो अपने नहीं है, उन सब तक दीन पहुंचाना है। और होमवर्क क्या है कि खास तौर पर जिन जिन तक जिनको आप नहीं जानती, 2 नए लोगों को जो मुसलमानों में से हैं उन तक, और गैर मुस्लिमों में से 2 लोगों तक जो है ना दीन का पैगाम पहुंचाना। ये आपके आइंदा आपके पेपर में आएगा। आप कैसे पहुंचाएंगी, कुरान जो है वो देना चाहती हैं, कोई तोहफा देकर उनको बताना चाहती हैं कि मैं मुस्लिम हूं, पूरे मुस्लिम लिबास में दावत करना चाहती हैं, किसी भी तरह से आपने फिर सोचना है कि कैसे मुझे दावा करना है। क्यों, अल्लाह ताला ने क्या कहा, हाजा बलागुल निन्नासी, कि ये लोगों के लिए जो है, इंसानों के लिए जो है वो पैगाम है। तो तमाम इंसानों के लिए रसूल अल्लाह को भेजा गया, और अब ये मेरा और आपका काम है कि इंसानों तक कुरान पहुंचाना है। तो कुरान का पहला मकसद क्या है, फले युन जरू बेही, कि इसके जरिए से लोगों को खबरदार किया जाए, लोगों को डराया जाए। तो जब कुरान पढ़ेंगे तो खबरदार करेंगे ना। हम तो भूल भटक के क्लास में आ ही गए, अल्लाह ने हमें इस बेहतरीन जगह पे मस्जिद में ले ही आया, कुरान पढ़ने वालों में, खुशकिस्मतों में हमें शामिल कर ही लिया, तो हर वक्त परेशान रहते हैं कि 3 दिन क्लास, हर रोज कुछ दिनों में टेस्ट आ जाता है, फिर पढ़ना पड़ता है तो मुश्किल लगता है। तो असल बात क्या है कि इसके जरिए लोगों को खबरदार करना है, और खबरदार कब करेंगे, जब खुद पढ़ेंगे। दूसरी बात क्या है, वले या लमू, और ताकि वो जान लें, क्या जाने, अन्नमा हुआ इलाहुम वाहिद, कि वो अल्लाह एक ही है बस। तौहीद का पैगाम, लोगों को तौहीद का पैगाम देना। और तीसरी बात क्या है, वले यज़क्कर उलुल अलबाब, और जो अकल रखते हैं वो होश में आ जाएं, तेरा मिलना तेरा नहीं मिलना, और जन्नत है क्या जहन्नुम क्या। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अकल वाले वो हैं जो कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं और थकते नहीं हैं, जो अमल करते हैं और रोते नहीं हैं, जो जीते हैं या रोते हैं तो आखरत के लिए और रब की रजा के लिए। तो अल्लाह ताला नुज़ूल कुरान के जो 3 मकसद हैं वो हमें भी पूरा करने वाला बनाए, और हम सबको उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर ले जो कि कुरान के पैगाम को समझते हैं, और इसको फैलाने के लिए ना उन्होंने दिन देखा ना उन्होंने रात देखी। और अगर मैं और आप उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो गए तो वाकई हमारी खुश नसीबी के क्या कहने। मक्का मक्का में जब जाते हैं तो मक्का की जमीन के वो जर्रे, जहां पे बिलाल हबशी को तपती रेत पर लिटाया जाता था, है ना, जहां पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो चला करते थे, है ना, उस मट्टी से ही हमें निस्बत हो जाए, उन खुशकिस्मत लोगों से हमें भी निस्बत हो जाए। तो इसके लिए मुझे और आपको कुछ करना है इस दुनिया के अंदर, और वो क्या है कि अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।